सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ देवा, जय सुभद्रा। जय प्रभु पदा, पुढे बसा पुढे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, बहुत उत्साह से कीर्तन किया। रिमोट ले गया, रिमोट इसको बंद कर दो बस। थैंक यू वेरी मच। सब लोग फ्रेश हो गए, फ्रेश एकदम। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद सबका। ओके, क्या बंद करना है? इधर बंद कर दिया, वेरी गुड। तो आज बहुत ही एनीवे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है और इस दिन को महुलाष्टमी कहते हैं। बहुत सुंदर और पवित्र दिन है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र महीना है और उम्मीद है कि आप सब लोग रोज घर में अपने भगवान को दीपक अर्पण करते होंगे। कितने लोग अर्पण कर रहे हैं? मेरा आपको विनती है, हर रोज एक बाती घी में डुबाकर भगवान विष्णु को, राम भगवान को, नरसिंह भगवान को, या जगन्नाथ जी को, या कृष्ण को, जो भी आपके घर में है, उनको आप दीपक अर्पण करना चाहिए। क्योंकि इस महीने में ये दीपक अर्पण करने से खरबों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की प्रेम भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। इस महीने में जो दीपक अर्पण करेंगे वो जीवन के अंतिम समय पे जितना प्रकाश आपने निर्माण किया सारा प्रकाश आपको भगवान के धाम का रास्ता प्रकाशित कर देगा। इसलिए इसके लिए आप कंजूस मत करना, आलस से भी मत करना, क्योंकि भगवान इस महीने में बड़े दयालु होते हैं और सभी लोगों पर कृपा करते हैं। जो भी व्यक्ति कितना भी पापी हो, एक दीपक दान करने से पाप मुक्त हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके हृदय में प्रेम भक्ति का उदय होता है। इतना सरल बना दिया भगवान ने। और साथ साथ में जो भगवान के नाम का जप करेगा वो इस महीने में एक नाम का उच्चारण करने से 1000 बार नाम उच्चारण करने का लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए जिंदगी भर भी कुछ नहीं किया होगा लेकिन कार्तिक महीने में कुछ करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा लाभ भगवान देते हैं। और धाम में जाएंगे तो उसका 1,00,000 बार और आपको लाभ मिलेगा। 1,00,000 बार, 1,00,000 बार अगर वृंदावन जाएंगे, नासिक जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे या मायापुर जाएंगे, वहां जाकर भगवान को पुकारेंगे तो यहाँ का 1,000 गुना और वहां का 1,00,000 गुना, कितना क्या 10 कोटि गुना आपको लाभ मिलता है। इसलिए बहुत लोग इस समय समय निकालकर धाम में जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, भगवान के भक्तों को भोजन कराते हैं, भगवान के लिए का इंतजाम करते हैं, फूलों की माला बनाते हैं भगवान के लिए, दीपक अर्पण करते हैं, यात्रा करते हैं, यात्रा की भगवान की जो अलग अलग स्थलियाँ हैं दर्शन की वो दर्शन करते हैं, उधर बैठ के उधर की कथा सुनते हैं, वहाँ के भक्तों को दान देते हैं, वहाँ के मंदिरों को दान देते हैं, भगवान की सेवा में दान देते हैं। बहुत ज़्यादा लाभ है इस महीने में। और उस महीने में ऐसे उत्सव भरे हुए हैं भगवान के, खास करके भगवान के बाल लीलाओं के उत्सव इस महीने में है। भगवान के बालक अवस्था में जो भी भगवान ने लीला किया है वो सब इस महीने में भरे हुए हैं। सब जैसे भगवान ने रास रचाया शरद पूर्णिमा के दिन, जैसे भगवान ने गोवर्धन का पूजन किया, उसके बाद में वर्षा हुई तो गोवर्धन को उठाया 7 दिन और 7 रात, वो इसी महीने में हुआ है। भगवान ने छोटी गायों का चलाने का, पहले चलाते थे बालक अवस्था में, 5 साल के हो गए तो उनको बड़ी गाय का जिम्मेदारी गोपा अष्टमी को, यानी कि अगले 15 दिन के बाद में गो अष्टमी आएगी और एक उसको गोपा अष्टमी कहते हैं, आज की में बहुला अष्टमी कहते हैं, तो वो गोपा अष्टमी के दिन भगवान के बड़े गायों का जिम्मेदारी दिया गया चराने के लिए, तो बड़ा उत्सव होता है उसके लिए। नंदगांव में बहुत बड़ा उत्सव होता है, गायों की पूजा होती है, गो पूजा होती है, गोवर्धन पूजा होती है, तुलसी का विवाह इसी महीने के आखिरी पूर्णिमा को दिन हुआ है, फिर दीपावली इस महीने में आती है, भगवान को माताजी ने उखल को बांध दिया था दीपावली के दिन, हम लोग दीपावली मनाते ना उस दिन भगवान को यशोदा माई ने बांध दिया था, उसी दिन रावण को मारकर श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या में प्रवेश किए थे, दशरथ को मारा था, फिर वहां से निकले तो दीपावली के दिन मतलब जिस दिन पहुंचे उस दिन सभी लोगों ने अयोध्या में सब जगह दीप लगाकर भगवान का स्वागत किया, सब जगह दीपक का रोशनी उत्पन्न किया, सब हर घर में दरवाजे में ऊपर नीचे मंदिरों में महलों में सब जगह पर रास्ते पर सब जगह पर सड़कों पर सुंदर सुंदर दीप लगाकर भगवान का स्वागत किया। दीपावली के कई महत्व हैं, लक्ष्मी का पूजन होता है, बलि महाराज इसी बीच में सूतल लोक से ऊपर आते हैं और पृथ्वी लोक पर सब कुछ आराम चल रहा है ना, वो देखने के लिए सब जगह भ्रमण करते हैं और वो बड़े भगवान के महान भक्त हैं, वो बड़े ही महान भक्त हैं, तो इस दिन वो बलि प्रतिपदा के दिन ऊपर आते हैं, सब जगह उनका सत्संग सब उनका सत्संग प्राप्त होता है, पवित्र माना गया, इसलिए भी सब लोग दीपक जलाकर उनका भी स्वागत करते हैं। भैया दूज के दिन भाई और बहन हाथ पकड़कर जमुना जी में स्नान करते हैं और उस दिन बहन के ही हाथ का भोजन भाई जब करता है तो तो सभी पापों से वो मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ऐसा महिमा है इसका। हमको पता नहीं, हम लोग अभी भाई बहन को आरती उतारते बस गिफ्ट ले लेते हैं, उसका मीनिंग मालूम नहीं हमको। कुछ बहनें अपने भाइयों को बड़े प्रेम से चिकन और फिश खिलाते हैं भैया दूज के दिन, हम जानते हैं। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग ऐसे उसको मजा करने में उड़ा देते हैं। पैसे का भी अपव्यय करते हैं और पाप भी करते हैं दीपावली के उत्सव में। दीपावली का महीना इतना पवित्र है कि इस महीने में नॉन वेज का भोजन किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना लाभ इसमें मिल रहा है आपको वो सब आप नष्ट कर रहे हो ये सब गलत काम करके। कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई और कुछ गलत काम कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, उनको पता नहीं है। जैसे अनजाने में भी कोई पाप करता है इस महीने में तो उसको हजार गुना नुकसान होता है, और अनजाने में भी कोई भगवान की भक्ति का कार्य करता है उसको भी भगवान की भक्ति में हजार गुना प्रगति का लाभ मिलता है। आपको पता नहीं है, सब लोग दीपक अर्पण कर रहे हैं, आप भी लग गए उसके अंदर, आप भी अर्पण कर दिया तो सब लोगों को जो जानते हुए लाभ मिल रहा है आपको अजानते हुए लाभ भी मिलेगा। तो ऐसा समय होता है, एक समय का झोंका होता है जिसमें बहुत अनुकूल बातें होती है, आपको पता नहीं होने पर भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। ऐसे कहते हैं कि एक दिन प्रहलाद पिछले जन्म में, प्रहलाद नहीं थे वो, तभी और कोई थे, स्त्री के वश में आकर उन्होंने क्या किया, वो स्त्री से भोग लेने के लिए बहुत बहुत उत्सुक थे, तो वो एक जगह पर गए और वो जगह को उसने साफ किया, जगह को साफ किया तो वो नरसिंह भगवान का मंदिर था, भगवान विष्णु का मंदिर था। तो वो मंदिर साफ करने का उसको लाभ मिला और अगले जन्म में वो प्रहलाद था। आपको समझ आया, उसको पता नहीं था वो किस लिए कर रहे हैं, वो तो कर रहा है ऐसे ही, लेकिन भगवान का कृपा ऐसा उसके ऊपर था, उसकी भी ऐसा भाग्य था कि उस जगह ऐसा जगह पर गया जो भगवान का मंदिर था, वो साफ किया उसने, ऐसे ही थोड़ा गंदा पड़ा था साफ कर दिया उसने। ऐसे कहते कि किसी चूहे ने वो घी खाने के गया, घी खाने के लिए, लेकिन वो जो दीपक था वो भगवान को अर्पण किया कि भगवान की ओर मुड़ गया वो दीपक, तो उसने मुंह लगाया उसने, तो भगवान ने उसके मुंह से वो दीपक स्वीकार किया और वो चूहे को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। अब समझ सकते हो कितनी कृपा है, वो तो घी खाने के लिए आया था, लेकिन अगर कोई गलती से भी मंदिर में फिसल के गिर गया तो उसको भगवान को दंडवत करने का लाभ मिलता है, वो गटर में भी गिर सकता है, कुछ लाभ नहीं मिलेगा उसको। अगर मंदिर में गिर गया हम जो, तो भगवान उसको दंडवत के रूप में स्वीकार करते हैं, कितने दयालु है भगवान हमारे। उस तरह से इस महीने में उन्होंने बहुत सारे ऐसे लाभ बना के रखे हैं, डिस्काउंट सेल बना के रखा है, ताकि हम सब लोग जाने या ना जाने, पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, लेकिन कुछ भी करेंगे उनकी सेवा में तो उनको दिव्य लाभ मिलेगा। इसलिए हमको पल पल इस महीने में भगवान के लिए अपना मन बजाना चाहिए, पल पल उन्हीं के विचार में मन रहना चाहिए, गलत विचारों को छोड़ देना चाहिए, चीटिंग छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, ये महीने में पापों से दूर रहना चाहिए, गलत काम से दूर रहना चाहिए। बहुत तम्बाकू खाने की आदत है, बहुत सिगरेट पीने की आदत है, बहुत गलत काम करने की आदत है, गलत खाने की आदत है, प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए इस महीने में। और जो भक्त लोग हैं उनके मन में कुछ विचार है, कोई लोभ है, कोई ऐसा क्रोध है, कोई ऐसी द्वेष किसी के मन में है, उनको छोड़ देना चाहिए। किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, खास करके भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, और भक्तों के बीच में उनकी सेवा करते हुए उनके मुख से भगवान के सुंदर सुंदर कथा जो इस महीने में हुई है उसके बारे में सुनना चाहिए। और हमारे अस्पताल में इतना सौभाग्य है कि आपको ऑन ड्यूटी बीच में आकर ये भगवान के विषय में सुंदर कथा सुनने का मौका प्राप्त है ना। इसलिए हमारा अस्पताल ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भक्ति वेदांत अस्पताल में बहुत कृपा उपलब्ध है, बहुत कृपा अवेलेबल है, यहाँ पर आप लोग ले सकते हो। अगर आप थोड़ी सी श्रद्धा रखते हो, थोड़ी सी इच्छा रखते हो, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर बहुत सारा कृपा भगवान का इलाज करते करते, नौकरी करते करते यहाँ उपलब्ध है ना। मरीज यहाँ भर्ती होते हैं तो उनको रथ पहुँचता है उनके पास में, और ये सब दीपक दान मरीज के द्वारा भी होता है। कितना अद्भुत चीज है ये, कितनी अद्भुत वस्तु है। करने वाला भी लाभ भाग्यवान है, जो करा रहा है उनको रथ सेवा कर रहे हैं वो भी कितने भाग्यवान है। स्वयं तो दीपक अर्पण कर ही रहे हैं, सैकड़ों लोगों को दीपक दान करने का लाभ वो दे रहे हैं, ऐसा है। और आप लोगों को भी अगर इच्छा है तो आप कह सकते हैं आज मेरे तरफ से 25 दीपक मैं स्पॉन्सर करता हूँ, 25 लोग इसको अर्पण करें, जो भी उसका खर्चा है मैं दे दूंगा। मंदिर में ऐसे हर रोज स्पॉन्सरशिप लगा हुआ है, कोई दिन फ्री नहीं है कार्तिक में, सब लोगों को भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ देना है। मंदिर में कोई भोजन का स्पॉन्सरशिप का डे खाली नहीं है, हर दिन का किसी का स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि ये महीने में ब्राह्मणों को और भक्तों को भोजन खिलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सब लोग एक भी डेट फ्री नहीं है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब बुक हो गया है। हम जानते नहीं है, लोग जो जानकारी रखते हैं वो कितना लाभ प्राप्त करते हैं, छोटा मोटा काम करके बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। इसी महीने में भीष्म देव ने एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक व्रत किया था, उसको कहते हैं भीष्म पंचक, एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक। और ये पंचक व्रत करके उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली थी और अंतिम समय में भगवान का नाम प्राप्त किया था। तो पंचक हमारे लिए भी उपलब्ध है, हम भी ये 5 दिन को उपवास करके 5वें दिन वैष्णवों को अपने हाथ से भोजन करा के 6वें दिन उपवास को छोड़ के उसी भक्ति को लाभ कर सकते हैं जो भीष्मदेव ने अपने जीवन में प्राप्त किया था। तो आज का दिन जो है वो राधा कुंड नाम की बहुत सुंदर स्थान है वृंदावन में, सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी जो है उस पर पृथ्वी पर भगवान ने कई बार अवतार लिए, कभी राम बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी मत्स्य, कभी वराह, कभी कूर्म, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी राम, कभी भगवान कृष्ण, कभी बलराम, ऐसे अनेक प्रकार के अवतार लेकर पृथ्वी को बहुत पावन कर दिया उन्होंने। इसलिए पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है सारे ब्रह्मांड के लोगों में, स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण पृथ्वी है, स्वर्ग से भी महान पृथ्वी को माना गया है। वहां पर बहुत ऐश्वर्य से महान नहीं है, जहां पर भगवान के चरण लगे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पृथ्वी में भी भारतवर्ष बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि पृथ्वी में से भगवान ने भारतवर्ष को चुना कि मैं यहां अवतार लूंगा, इसलिए भारतवर्ष में सभी सारे अवतार इधर ही हुए हैं, जितने भी अवतार हैं। संतों के अवतार भारत भूमि में हुए हैं, कितने सारे संत हैं, हर धर्म के, सिख धर्म के, हिंदू धर्म के जितने भी संत हैं वो सब भारत भूमि में उनका अवतार हुआ है। फिर भारत भूमि में मथुरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मथुरा में परम भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो है, गोविंदम आदि पुरुष जो है, उनका अवतार उधर मथुरा में, उसको मथुरा मंडल कहते हैं, मथुरा 84 कोस का इलाका है वो, उसके अंदर भगवान ने जन्म लिया। फिर गोकुल में आए, फिर वृंदावन में गए, फिर नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सब जगह लीला किया। तो उसमें 137 वन है जो भगवान को बड़े प्रिय हैं, उन 137 वन में से 12 वन बहुत ज्यादा प्रिय है भगवान को, जिसमें वो खास लीला करते हैं। और उन 12 वनों में से श्री वृंदावन जो है वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, वो वृंदावन के अंदर नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जमुना सब आता है एक वन के अंदर। सो वृंदावन से भी अधिक उनको वृंदावन में गोवर्धन उनको बहुत प्रिय है, जो रासलीला वृंदावन में करते हैं उससे भी अधिक आनंद वाली लीला जो है वो गोवर्धन के आसपास करते हैं। और गोवर्धन के अंदर भी भगवान को अति प्रिय जो है वो है राधा कुंड और श्याम कुंड, जो गोवर्धन के दो आंखों की तरह, गोवर्धन पर्वत जो है वो मोर के आकार में है, मोर स्वरूप है, तो मोर को पुछरी भी है, एक तरफ पुछरी का विभाग आता है, एक तरफ उनकी गर्दन भी आती है, एक तरफ उनका मुंह भी आता है, एक तरफ वो मुंह के अंदर आंखें भी आती हैं। तो वो जो आंखें हैं दो, राधा कुंड और श्याम कुंड माना गया है। उसकी कहानी ऐसी है कि कंस जो है ना वो हर रोज एक राक्षस भेजा करता था। हमारे पास जितनी कहानी है हमको पता है वो तो गिनी चुनी कहानी है, सब कहानी नहीं मालूम है हमको, सब कहानी तो सुखदेव जी को वर्णन करना मुमकिन नहीं था 7 दिन 7 रात में। तो उन्होंने मेन मेन राक्षस का स्वरूप बताया, लेकिन शास्त्र कहता है कि हर रोज सवेरे एक नया राक्षस कंस के दरबार से निकलता था कृष्ण का वध करने के लिए, छोड़ो उसको, नीले रंग का बालक, नीले रंग की धोती पहनता है, मोर पंख धारण करता है, वन में डोलता है, गाय चराता है, मुरली बजाता है, जाओ ढूंढो उसको। तो हर एक राक्षस पहुंचते पहुंचते दोपहर होती थी, मथुरा से निकला ढूंढे ढूंढे, वृंदावन में ढूंढ रहा है सब जगह, किधर लीला कर रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, मिल गया तो फिर दोपहर के समय पे उसका वध होता था। और लंच होने के बाद, वध होने के बाद में यमुना जी में स्नान करके फिर भोजन करने को भगवान बैठते थे, रोज का लीला था उनका। तो राक्षस आकर उनकी लीला में भंग करता था, तो भंग होने के बाद में उत्तर कृष्ण कृष्ण बचाओ, तो फिर राक्षस को मारते थे। तो ऐसे एक दिन जो है बैल के रूप में एक राक्षस आया, उसका नाम था अरिष्टासुर, बहुत भयंकर था वो। हम लोग आजकल देखते हैं ना आतंक होता है, तो वो क्या है बॉम्ब डालता है, उनके पास खाली एक ही अस्त्र है, बॉम्ब डालते हैं। तो आतंक मतलब क्या, बॉम्ब फटना, विमान में बॉम्ब, शहर में बॉम्ब, बिल्डिंग में, एयरपोर्ट में, इधर उधर ताजमहल में बॉम्ब डालते हैं, तो आग का उपयोग करते हैं, स्पोर्ट करते हैं। लेकिन जो आतंक वृंदावन में होता था उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। कैसा आया वो, उसका आकार जो है ना, वो ऐसा कहा गया है कि उसका जो था ना, वो क्या कहते हैं आप हिंदी में, जो बैल बैल को गाय को होता है ना, ऐसा बोल होता है ना, उसको हम बोलते हैं, हम वो अलग नाम है हिंदी मराठी इंग्लिश में। तो वो जो है वो बादल में था, वो जब आया तो उसका जो पीठ है वो बादल में था, मतलब कितना ऊंचा होगा वो, इतना भयंकर, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि ऐसा झूठ मूठ का बात कर रहे हैं, ऐसा कभी बैल होता है क्या, अपना बैल तो ज्यादा से ज्यादा 4 फुट 5 फुट का होता है, बड़ा से बड़ा होगा तो 6 फुट का होता है, लेकिन ये तो अब आकाश की बात कर रहे हैं। राक्षस है वो जब भाग के आ रहा था तो उसकी पूंछ ऐसी लहरा रही थी आकाश में, ऐसी नहीं थी वो, ऐसी ऊपर थी। तो वो जमे हुए बादल जो है उसके पीठ के ऊपर, वो पूंछ के द्वारा उसको यहां वहां करता था। जब भाग रहा है तो इधर के बादल जो है वो तितर बितर हो रहे हैं। अच्छा, पैर से जब भाग के आ रहा है तो धरणीकंप हो रहा है, अर्थक्वेक, बिल्डिंगें गिर रही हैं, महल गिर रहे हैं, घर गिर रहे हैं। और जो भाग के आ रहा है क्रोध से, तो उसकी आंखें लाल लाल, नाक में जो हवा निकल रही है वो गरम गरम तूफान की तरह आ रही थी, मतलब एक साथ भूकंप भी हो रहा है, एक साथ तूफान भी आ रहा है, आंधी भी आ रही है। और कितने लोगों का ऐसे वर्णन है कि कई गोपियों का गर्भपात हो गया, गर्भवती थी, गर्भपात हो गया डर के मारे, इतना भयंकर आतंक, एक एक साथ में अर्थक्वेक भी हो रहा है, भूकंप भी हो रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बादल यहां से वहां हो रहे, भयंकर आवाज आ रही है, गर्जना डरावनी, ऐसा आके फिर वो रुक गया उधर गोवर्धन के पास। उसकी नजर, उसके सिंह का टोक जो है वो कृष्ण की ओर था। तो उन दोनों में वो सब डर गए, एकदम सब डर गए, इतना आतंक मच गया वृंदावन में, सब डर गए, भाग रहे इधर उधर, बॉम्ब फटता है तो कैसे पीटी में कैसे हो गया, सब लोग चार दिशा में भाग रहे, कोई खून गिरा हुआ है, कोई वायर गिरी है, कोई औरत गिरी है, कोई आदमी गिरा है, कोई मर गया, कोई जख्मी, लोग भाग रहे हैं, सब लोग छोड़ के समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कहाँ से गोली चल रही है, पता नहीं चल रहा है। तो सब लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा भयंकर राक्षस आ रहा है, कहाँ भागेगा वो, इतना बड़ा राक्षस है तो किसी दिशा में भागेंगे, फिर भी भाग रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने फिर अपना दुपट्टा को कमर में बांधा और तैयार हो गए वो, और वो तो छोटे से बालक थे, उस पर हमला किया, भगवान ने उसको घुमाया, हाथ और पैर पकड़ के गोल गोल घुमाया। लगेगा क्या बकवास कर रहे हैं, 7 साल का बालक और इतना भार जैसा राक्षस को कैसे घुमा सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसे ही किया सब। भगवान चाहे 5 साल के बालक हो या 24 साल के युवा उस अवस्था में हो, भगवान तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। वो छह दिन के बालक थे ना, 6 days, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ अब तक, तभी उन्होंने 12 मील लंबी पुतना का वध किया था। 12 मील लंबी थी वो, उसके स्तन जो ना वो पहाड़ जैसे थे, इतने बड़े, इतना शरीर बड़ा, तो उसके स्तन ऐसे लगते थे कि पहाड़ जैसे। उसके ऊपर बैठ के वो चूस लिया उसने, दूध दूध चूस लिया, फिर विष भी चूस लिया, उसके प्राण भी चूस लिए। तब कितने साल के थे वो, 6 दिन के थे केवल, साल तो भूल ही जाओ। तो भगवान को छोटा या बड़ा होने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही राक्षसों का संहार करते हैं। तो बड़े हो गए, फिर हस्तिनापुर में गए, उधर भी राक्षसों का संहार किया उन्होंने, लेकिन वृंदावन में बिना किसी शस्त्र से, कोई तलवार, कोई धनुष, कोई चक्र, कोई सब द्वारका के बाद में चलाया उन्होंने, कि वृंदावन में केवल हाथ से युद्ध किया उन्होंने। तो दोनों हाथ से आपने इतने बड़े बैल के दो पैर पकड़ के घुमाया उन्होंने, ऐसे गोल गोल घुमा के पटक दिया, तो वो बेहोश हो गया। फिर इतना क्रोध आया उसको कि इतनी हिम्मत मुझे घुमा के पटकने की, तो और क्रोध आया तो और जोर से हमला किया और एक बार उठाकर घुमा के पटक दिया। तो उसने आकर भगवान पर बहुत सारे हमले किए, बहुत सारा अटैक किया। फिर भगवान ने अपने पैर से उसको एक लात मारा, जैसे एक लात मारा भगवान ने उसको, तो साथ में उसने उल्टी भी किया, पेशाब भी किया और टट्टी भी किया एक ही साथ में। इतना भयंकर तिलमिला गया वो, उसके साथ उसकी जान भी निकल गई और वो इतना भयंकर राक्षस जमीन पर गिर गया। ये सब गोपियां देख रही थी, बाल बाल भी देख रहे थे, अरे भगवान ने इतने बड़े राक्षस को अपने आंखों के सामने अकेले ने मार दिया, इतना भयंकर था वो, कितने बच्चे गिर गए उसमें गर्भपात के रूप में, कितनी मैयाएं डर गए, कितने पेड़ गिर गए, कितने जमीन में छेद हो गया, भूकंप हो गया, इतना भयंकर राक्षस को भगवान ने अपने आंखों के सामने मार दिया। बोलो अरिष्टासुर मर्दन भगवान की। भगवान बड़े खुश होकर आए, राक्षस का वध किया, राधा रानी के पास में आए, राधा रानी गोपियों के पास में। राधा रानी और गोपियां बोलते कि आपसे हम बात नहीं करेंगे अभी। अरे क्यों नहीं बात करेंगे, आपने बैल का वध किया है, बैल धर्म का प्रतीक होता है, हमारी माता बैल गाय है और हमारा बैल पिता है, वो दोनों धर्म के प्रतीक है, हम उनको माता पिता के समान मानते हैं। अरे नहीं, वो बैल नहीं था, वो राक्षस था, बैल के रूप में आया था, वो कंस की तरफ से आया था। बोले हम नहीं जानते कुछ, हमने देखा आपने बैल का वध किया, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप लग गए आपको, क्या करना चाहिए बताओ, क्या उपाय क्या उसका। राधा रानी और गोपियां कहती है अभी आपको विश्व भर में जितनी भी तीर्थ है, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी वन हैं, जितने भी पवित्र स्थान हैं, वो सबका दर्शन एवं स्नान करना पड़ेगा। सब नदियों में, सब कुंडों में, सब सरोवरों में, सब सागर में जितने पवित्र हैं, सब आपको स्नान करके, सबका दर्शन करके शुचिर्भूत होकर आना होगा, तब हम मानेंगे कि आप शुद्ध हो। भगवान कहते मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्थानों को ही बुला लेता हूँ। जितने भी दुनिया में जितने भी कुंड थे, जितने भी सरोवर थे, जितने भी वन थे, जितने भी पवित्र मंदिर थे, जितने भी नदियां थे, जितने सागर थे, जैसे कि भोपाल का एक सागर है, शिव सागर बोलते हैं उसको, घी से अपना दूध से बना हुआ है, भगवान स्वयं लेटे रहते हैं उसके, शिव सागर बोलते हैं, शिव सागर में लेटे हुए भगवान को शिव मोक्षा, वो सागर भी वहां पर पहुंच गए। सबने दर्शन दिया क्योंकि सब व्यक्ति रूप थे ना, देवी और देवता थे, वो नदी और कुंड के रूप में सेवा करते। नदी कौन है, जमुना देवी, गंगा देवी, सरस्वती देवी, नर्मदा देवी, कावेरी देवी, सरयू देवी, सब देवियां हैं, भगवान की नदी के रूप में सेवा कर रहे हैं, कुछ कुंड के रूप में कर रहे हैं, कुछ सागर के रूप में कर रहे हैं, सब व्यक्ति वहां प्रकट हो गए हाथ जोड़कर, क्या सेवा करें भगवान, आपने हमको याद किया। उन्होंने पैर से गड्ढा बनाया, इस जगह पर अपने पैर को धक्का दिया जमीन पे, फिर बड़ा गड्ढा बना दिया, बोले ये सब इसमें आपको जमा करो, मतलब प्रवेश करो उसके अंदर। तो सारे पर्वत तीर्थ सब जो जमा हो गए और जल रूप में सब नदियां और सागर क्षीर सागर सब जमा हो गए, जितने भी तीर्थ हैं सब वहां पर उपस्थित हो गए, प्रवेश कर दिया उन्होंने, पूरा कुंड भर दिया उन्होंने। तो फिर भगवान ने और उनके बाल बाल मित्रों ने उस पर स्नान किया और शान शुद्ध होकर आए वापस और खुद बोले गोपियों को जाकर, अभी तुम लोग पापी हो गई हो। क्यों, हम कैसे पापी हो गए, राक्षस के पक्ष में जाकर मुझसे वाद किया है, मेरा अपराध किया है। राक्षस को पक्ष लेता नहीं ना कभी, राक्षस पापी होता है, पक्ष बात नहीं करता है। आपने राक्षस के पक्ष में मेरे खिलाफ बात किया तो इसलिए आपको भी पाप लग गया, आपको भी अभी सारे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं उसमें स्नान करना पड़ेगा, और आपकी अगर इच्छा है तो मेरे कुंड में भी स्नान कर सकते हैं आप। वैसे भी रेडीमेड वो है, सब लोग वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो गोपियां बोलते नहीं, हम लोग उस कुंड में स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि उस कुंड में आपने जो अरिष्टासुर को मारा उसका पाप उसमें हमने छोड़ दिया है, उसमें हम लोग स्नान नहीं कर सकते, हम अपना कुंड बनाएंगे। बोलो कोई बात नहीं, आप अपना कुंड बनाओ, ये सब देवियां नदियां ऑलरेडी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको बोलो जल दे दो। बोले नहीं, हम अपना जल पैदा करेंगे। तो सारी गोपियां मटका लेकर वो जो राधा कुंड श्याम कुंड जहाँ नहीं भाई, वो कुंड का नाम श्याम कुंड पड़ा, श्याम ने स्नान किया, श्याम सुंदर जी ने स्नान किया, बहुत सुंदर कुंड है वो। फिर इधर राधा रानी ने क्या किया, जिस जगह पर वो बैल का एक पैर का निशान था, क्योंकि जैसा उसने पैर रखा तो कई जगह गड्ढे हो गए, कई जगह भूकंप हो गया, तो एक बड़ा गड्ढा था उसके पैर के निशान का, उसी को अपने कंगन तोड़ दिया, उसी को और गड्ढा को बड़ा कर दिया उन्होंने। और वहां से लेकर लाइन लगाई मानसी गंगा तक। मानसी गंगा और एक सुंदर स्थान है जहां पर भगवान ने गंगा जी को प्रकट किया है। मन से स्मरण करके उनके हृदय से गंगा जी प्रकट हो गई और जल उन्होंने वहां पर प्रकट किया उनका, सबके लोगों के सामने, नंद बाबा, यशोदा, बड़ी गोपियां, बड़े गोप, ग्वाल बाल फ्रेंड, सभी के सामने उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। गोवर्धन के बीच में वो सबसे सर्वसे विशाल कुंड है, उसका नाम है मानसी गंगा। तो वहां से कुछ 3-4 किलोमीटर का अभी भी अंतर है आज के तारीख में भी। उन्होंने वहां से लाइन लगाया वहां तक, और एक गोपी वहां से पानी निकाल रही है मानसी गंगा से और ट्रांसफर कर रही है, और ट्रांसफर करके वो गड्ढे में डाल रहे हैं। अरे बहुत समय हो गया उसके अंदर, तो फिर क्या हो गया, पसीना आने लगा, राधा रानी के कपाल पर पसीना, सब गोपियां पे पसीना, सब लोग थक गए, फिर भी उसमें ज्यादा कुछ पानी भरा ही नहीं। कृष्ण आते बोलते, अरे इतना क्यों मेहनत करते हो, ये लोग खड़े, इनको बोलो आप पानी दे दो, आओ अपने आप पानी दे देंगे आप। तो फिर भी नहीं मानती राधा रानी, बोले हम अपना पानी भरे। उसके बाद में जो पर्वत नदी तीर्थ लोग वहां पर खड़े हैं हाथ जोड़ के राधा रानी को विनती करते हैं कि हे दयालु करुणेश्वरी, हे करुणा की देवता, हम पर कुछ दया करो, हमको भी कुछ सेवा दो, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तो थक रहे हो, पसीना आ रहे हैं आपको, हम यहाँ तैयार हैं, अपना जल लेकर आप बोलो, आपके कुंड में डाल देंगे उसको तुरंत। फिर करुणामयी राधा रानी जो है मान जाती है, उनके विनती को, उनके अनुनय को, उनके विनय को, उनके करुणा, उनके करुणा भरी प्रार्थना को देखकर वो उनका भी हृदय पिघलता है, बड़े दयालु है राधा रानी, उनको हाँ बोल देती। तुरंत सभी जितने लोग वहां पर घुसे थे वो सब लोग इधर भी घुस जाते हैं, इस कुंड में प्रवेश करते हैं सब लोग, अपना जल रखते हैं, स्वयं प्रकट हो जाते हैं और स्वयं का स्थान वहां पर आश्रय लेते हैं। ऐसे कहा गया कि 68,000 तीर्थ हैं दुनिया में पूरे, सब नदियां वगैरह मिलकर वो सारे उधर प्रवेश करते हैं, उधर भी प्रवेश करते हैं, इधर भी प्रवेश करते हैं, और जब ये जल दे रहे हैं उसमें से राधा कुंड से भी पानी नीचे से इधर प्रवेश करता है, और ये बिल्कुल सुंदर एक कुंड तैयार होता है, उसका नाम है राधा कुंड। बोलो श्री राधा कुंड धाम की। हमारे संप्रदाय के आचार्य बोलते हैं कि राधा कुंड जो है वो इस विश्व का सर्वोच्च तीर्थ स्थान है, अल्टीमेट, मतलब उसके ऊपर कोई तीर्थ स्थान नहीं है, तो भगवान को सर्वोच्च सर्वोच्च प्रिय स्थान है। स्वयं भगवान ने इसका ऐलान किया, जब ये कुंड बनकर तैयार हुआ, इतना सुंदर, इतना विशाल कुंड तैयार हुआ, तो कंकण कुंड का नाम दिया गया पहले, और एक नाम राधा कुंड भी है क्योंकि राधा ने उसको अपने हाथों से बनाया। जब ये बन के पूरा हुआ तो इतना दिव्य दृश्य प्रकट हुआ, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, कृष्ण भगवान श्याम सुंदर जी, उन्होंने वरदान दिया कि ये कुंड नहीं है, इसमें पानी नहीं है, इसमें जो पानी आपको दिखाई पड़ रहा है वो राधा रानी का द्रव रूप प्रेम है, लिक्विड लव, पानी के रूप में उनका प्रेम यहां प्रकट हो गया। आपको लग रहा है कि ये तीर्थों का, नदियों का पानी इकट्ठा हो गया, वैसा नहीं है, राधा रानी के होने से ये पानी का रूपांतर उनके प्रेम की द्वर द्रव में हो गया है। जो भी व्यक्ति बोलते हैं इसमें स्नान करेगा, न केवल स्नान करेगा, उसको देखेगा, उसके जल को स्पर्श करेगा, उसको याद करेगा, बंबई में बैठकर उसका चिंतन करेगा, उसको मन में उसकी पूजा करेगा, या सामने से पूजा करेगा, या उसमें स्नान करेगा, या तो उसमें आचमन करेगा, इसमें कुछ भी करेगा, वो व्यक्ति को, राधा रानी को मुझ पर कितना प्रेम है वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति को ये सब कार्य करेगा, स्नान करेगा, राधा रानी मुझे कितनी प्रिय है उतना वो व्यक्ति मुझे प्रिय हो जाएगा, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, सबको वरदान दे दिया। आज भी वो जगह जो है वो सबसे पावरफुल जगह है। आज के दिन रात को 12 बजे राधा कुंड का निर्माण हुआ था बीच रात, क्योंकि शाम से लेकर वो पानी भर रहे थे, नहीं भर रहा था, तो रात को फिर 12 बजे सब लोगों ने जल दिया उसके अंदर, और राधा कुंड का निर्माण जो है प्रकट किया, मतलब आविर्भाव, राधा कुंड बीच रात में प्रकट हुआ। तो हर राधा कुंड के आविर्भाव के दिवस में, मतलब आज के दिन में रात को 12 बजे राधा कुंड के अंदर से दूध निकलता है, ये सब लोगों ने दर्शन किया है जाते हैं। आज की रात में वहां लाखों की भीड़ होती है, सब लोग उसमें कूदते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था कि राधा कुंड कोई साधारण कुंड नहीं है, जैसे वृंदावन में और भी हजारों कुंड है, 1,000 कुंड तो केवल काम्य वन में बनाए गए हैं, उसमें 9 परशुराम जी ने बनाए, 1 पांडव ने बनाया, बहुत सारे कुंड है, एक वन में ऐसे 137 वन है वृंदावन में, हर एक कुंड में कुछ ना कुछ लीला है। एक कुंड ऐसा है कि जिसमें नंद बाबा ने 100,000 गायों का दूध निकाल के वो कुंड बनाया था। क्यों? क्योंकि बलराम जी द्वारका से मथुरा में वृंदावन में उनको मिलने आए थे, तो उनका स्वागत करने के लिए, अभिषेक करने के लिए 100,000 गायों का दूध निकाल के वहां पर भर दिया था। उस दूध से उनका अभिषेक किया उन्होंने, उसका नाम है क्षीर सागर कुंड, वो बलदेव जी में है। एक कुंड ऐसा है कि गोपियों ने दूध निकाल निकाल कर उधर जाओवट नाम का गांव है उसको उसमें बनाया था, उसका नाम है रत्नाकर कुंड। और वो कुंड ऐसा है कि उसमें दूध से बनाया था, लेकिन हर रोज उसमें से रत्न निकलते थे और वो रत्न निकल के सब गोपियां राधा रानी का श्रृंगार करती थी। रत्नाकर कुंड कहते हैं उसको, दूध का कुंड, लेकिन रोज हीरे जवाहरात निकल रहे हैं उसके अंदर। एक कुंड ऐसा है वो कोशी में है, जिसमें द्वारका का समुद्र प्रकट हो गया था, तो गोपियों ने कहा कि द्वारका में बहुत दिन समय बिताया, हमको दर्शन कराओ सागर का, हमारे वृंदावन में सागर नहीं है। तो भगवान ने सागर को प्रकट कर दिया, रत्नाकर कुंड, और एक रत्नाकर कुंड। भगवान ने गोपियों ने कहा कि अरे आपने तो बहुत आंसू बहाए हमारे याद में, हमने सुना है द्वारका में रोते थे आप, उसकी नदी बन गई है गोमती, वो कैसी नदी हमको देखना है। तो भगवान ने वो द्वारका की गोमती नदी को कोशी में प्रकट कर दिया गोपियों के आनंद के लिए। ऐसे चित्र विचित्र वहां पर कुंड है, लेकिन सब में हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन राधा कुंड में स्नान करने के लिए प्रभुपाद जी ने मना किया। राधा कुंड जो है कोई साधारण जल नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, वो तीर्थों का राजा है। विश्व के सारे तीर्थ वहां पर इकट्ठा हुए हैं, ऊपर से राधा रानी का प्रेम, स्वयं राधा रानी, और एक वरदान उसके अंदर है, स्वयं राधा रानी का स्वरूप है वो। राधा रानी और राधा कुंड में कोई भेद नहीं है, तो कैसे हमारे पापी पैर उसके अंदर घुसा सकते हैं हम लोग। तो दूर से हाथ में 3 बार लेके सर पे छिड़कना काफी है, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, इतना आपके लिए काफी है, कोई इसमें उतरेगा नहीं, ऐसा उन्होंने मना कर दिया था। तो बाकी सब लोग कूदते हैं, लेकिन ज्यादा करके गौड़ीय वैष्णव ज्यादा जाते नहीं, क्योंकि जानते हैं कितना महत्वपूर्ण, कितना गंभीर और कितना दिव्य स्थान है, इसलिए दूर से उसकी पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ। लेकिन बहुत संतों ने उसमें स्नान किया है जो शुद्ध हृदय है, पापी हृदय है, जिनके मन में काम वासना है, वो उसमें स्नान नहीं करते। इसके किनारे में बैठकर भगवान के नाम का जप करना, ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य आपका ये होना चाहिए कि हमको राधा कुंड के किनारे जाके भजन करने का मौका मिल जाए, चाहे एक दिन, चाहे एक घंटा, चाहे एक महीना, चाहे परमानेंट निवास, या जैसे भी हो, राधा कुंड में बैठकर कुछ समय के लिए क्यों ना हो भगवान को पुकारना चाहिए। वहां पर हजारों लाखों गुना आपको लाभ मिलेगा, करोड़ों गुना लाभ मिलेगा एक नाम भगवान का लेने से, इतना पवित्र स्थान है वो। दर्शन मात्र से जीव मुक्त हो जाता है बंधन से और भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। वो आज की तारीख में कहां पर है, मथुरा स्टेशन में उतरेंगे तो मथुरा स्टेशन से आपको 40 किलोमीटर का अंतर है। आप गोवर्धन इलाके में आएंगे, गोवर्धन इलाके के उस तरफ, एक तरफ उत्तर की तरफ राधा कुंड और श्याम कुंड, उसको अरिष्ट ग्राम भी कहते हैं, अरिष्ट ग्राम भी कहते हैं, जहां पर अरिष्ट असुर आया था, और वहां पर ही बहुत अलग अलग सुंदर लीलाएं हैं। और जितने भी विश्व में जितने आचार्य हुए हैं, समझो अभी पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य हुए हैं, है ना, और निम्बार्काचार्य हुए हैं कुमार संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय में, भगवान स्वयं अवतार लिया है, कितने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कितने सारे बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों ने अवतार लिया है, विष्णु स्वामी ने अवतार लिया है, रामानुजाचार्य ने अवतार लिया है, और जितने जितने संप्रदाय के जितने जितने आचार्य गुरु हैं, गुरुजन, सब लोगों ने राधा कुंड किनारे आके भजन किया है। सब लोगों ने राधा कुंड किनारे में कुछ समय रहकर अपने जीवन का एकांत में भजन करते हुए बिताया है। इसलिए सभी आचार्यों की वहां पर बैठक है, कोई समाधि है, कोई भजन स्थली है, कुछ ना कुछ है उधर, सब लोगों ने कुछ ना कुछ समय वहां बिताया। और विशेष बात यह है कि वृंदावन के जो प्रमुख विग्रह हैं, वो सारे विग्रहों का मंदिर भी उधर है, क्योंकि जब औरंगजेब का हमला हुआ था तो कुछ सब लोगों ने भगवान के विग्रहों को वहां से शिफ्ट कर दिया जयपुर के रास्ते पे लेके जाने के लिए। जयपुर के रास्ते में उन्होंने सब लोगों ने राधा कुंड में विश्राम किया, जहां जहां अलग अलग मंदिर के भगवान के विश्राम किया, वहां वहां मंदिर बना हुआ है। मूल मूर्ति जो आगे चले गई, जयपुर चले गए, लेकिन जहां जहां वो भगवान रुके वहां पर मूर्ति बनाकर मंदिर बनाए गए हैं। तो राधा कुंड है ना, केवल वो 68,000 तीर्थों का एक मिलाप है, दोनों मिलकर। फिर उसके आसपास में और हजारों पवित्र स्थलियां हैं, लीला स्थलियां भगवान की। तो राधा कुंड में राधा रानी हर रोज सुबह 11:48 में आती है अपने सखियों के साथ में, और वहां पर श्याम कुंड में स्नान करती है। फिर श्याम कुंड के ऑपोजिट साइड में किनारे में जाकर कृष्ण भगवान के साथ में वो है ना सारी पाठ वो खेलते हैं, उसको हिंदी में चौसर बोलते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ जब भी कुछ खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो राधा रानी को हरा देते हैं। लेकिन सारी पाठ में राधा रानी कृष्ण भगवान को हरा देती हैं। उसको कहते हैं पाशा खेला, मतलब पाशा होता है ना, वो पासे डालकर खेलते हैं ना, उसमें राधा रानी बहुत कुशल है। वो सारे गेम्स में हारने के बाद बदला लेती है पाशा खेला में, उनको हरा देती है। सुंदर लीला है वहां पर राधा कुंड के बीच में। ऐसा एक सुनहरा कमल है अदृश्य, दिखाई नहीं पड़ता किसी को, उसमें राधा और कृष्ण विराजमान होते हैं रत्न के सिंहासन पर, और सब सखियां चारों ओर आठों ओर कमल में बैठकर उनकी सेवा करती है। उसमें कितने लोगों की समाधियां, बैठक और भजन स्थली है, जानवा देवी की बैठक स्थली है, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन स्थली है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का है, रूप गोस्वामी वहां पर रहे, भगवान जी के गुरु जी का घर है उधर, उपाध्याय का गुरु जी का और उनके पिताजी का घर, मतलब उनका ही घर, बाप बेटो बीवी बना के रखा उसको, मार के रखा वहां पर, वो आकर रहते हैं। इतना सुंदर स्थान है, जीवन में एक बार जाना चाहिए। हमारे आई कैंप में सब लोग वहां पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राधा रानी की जो असीम कृपा है वो उस जगह पर प्राप्त है, मिल सकती है, बहुत आसानी से मिल सकती है। इतना भी पापी व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसको झट से कृपा होती है उसमें। एक और सुंदर कहानी आज के दिन में, राधा कुंड का आविर्भाव, श्याम कुंड का आविर्भाव आज के दिन हुआ है। आज रात को 12 बजे इनका आविर्भाव पृथ्वी पर हुआ। सब पृथ्वी के जीवों को जो यहाँ पर जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा में फंसे हुए हैं, सब लोगों को मुक्त करने के लिए राधा कुंड का आविर्भाव हुआ है। राधा रानी स्वयं अपनी असीम कृपा पहुंचने में, और वहां पर राधा कुंड के आगे आप जाएंगे 2 किलोमीटर आगे तो एक बहुला गांव है, वन है, बहुला वन। वो वन कैसे नाम पड़ा उसका, उसकी भी कहानी आज ही हुई थी किसी और समय, आज के दिन, मतलब 1950 में आज के दिन ये हुआ था और 75 में भी इसी दिन में दूसरा कुछ काम हुआ, वैसे बहुला वन में ये लीला हुई। उधर बहुला नाम की गाय थी, तो एक दिन वो चर रही थी तो शेर आया उसको पकड़ने के लिए। उसने शेर से कहा कि मुझे मत खाओ, मैं मेरी बेटी मतलब मेरा जो बछड़ा है उसको दूध पिला के आती हूँ। अभी देखो अगर आज की तारीख में अगर शेर को कोई गाय बोलेगी मैं आती हूँ जरा, तो शेर क्या छोड़ेगा उसको, हाँ कौन विश्वास करेगा। अरे जान से मरने का समय आ गया और वो बोलेगा कि जरा टाइम प्लीज, टाइम मिलता है क्या उधर कभी। लेकिन हम लोग कृष्ण भगवान के अवतार लीला के समय की बात कर रहे हैं, वहां पर गाय भी बोलती थी, पशु भी बोलते थे, और पक्षी भी बोलते थे, और संवाद करते थे मालिकों के साथ में वगैरह। इतना दिव्य समय था वो। आजकल का समय इतना पापी समय है। तो गाय ने बोला और शेर ने मान भी लिया, तो गाय गई अपने घर पे और बछड़े को बोली, बेटा आज जितना मांगता है उतना दूध पी ले, आज मेरा शेर के पास जाकर मृत्यु होने वाला है। अभी आजकल की गाय, आजकल के हम लोग होते तो क्या होते, अच्छे हो गए भाग गए, अभी भागो यहाँ से, वापस शेर को मिलने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज जो आज नहीं हो सकती, लेकिन गाय ने जैसे बोला बालक को कि दूध पी ले तू, आखिरी टाइम पी ले, तो उससे बोला मैं दूध नहीं पीऊंगा, तुम्हारे बदले में मैं जाऊंगा शेर को भोजन कराने के लिए। तो भैया और बेटे में झगड़ा हो रहा है, नहीं मैं जाऊंगी। तो ये भी जो संवाद हो रहा है माँ बेटी के बीच में, तो वो ब्राह्मण सुनता है जिसकी ये गाय और बछड़े था। ब्राह्मण आके सुनता है, अरे ऐसा हुआ है, गाय को जाना है और बछड़ा बोल रहा है मैं जाता हूँ। तो मालिक बोलता है कि आप दोनों नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, क्योंकि आप मेरी प्रजा हो, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, आपकी देखभाल और सुरक्षा मेरा उत्तरदायित्व है। तो बालक बोलते नहीं 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 आप क्यों जाएंगे, आप हमारे मालिक है, आपका घर के इंचार्ज है, आप नहीं जाएंगे। तो गाय बोलते नहीं 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 मेरे को शेर ने पकड़ा था, आप क्यों जाए, दोनों जाएंगे, मैं जाऊंगी। तो आखिर में क्या होता है, तीनों पहुंचते उधर, वो शेर को बोल रहे मुझे खाओ मुझे खाओ मुझे खाओ, शेर भी परेशान किसको खाऊं। हाँ तीनों लोग अपने बोल रहे मुझे खाओ मुझे खाओ। ये भी आप लोग हंस पड़े कि नहीं, क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसा नहीं होता है। खुद को मरना है तो दूसरे को धक्का मार के अपने को बचाएंगे, उसको मार देंगे, है ना, और झूठ मूठ बोल के भाग जाएंगे, वापस आएंगे नहीं। किसी ने पकड़ा तो बोलेंगे एक रुक फ्रेंड से पैसा लेके आता हूँ, ऐसा बोलेगा बोलेगा, टीसी ने अगर मान ही लिया, मानता तो नहीं है, वो मान गया तो वो दूर ऐसा भाग जाएगा कि टीसी भी देखते रहेगा, अरे फ्रेंड का नाम बोला और गया, गुल हो गया वो। लेकिन यहां पर क्या स्थिति है, दिए हुए वचन को पालन करने के लिए गाय भी बद्ध है, वचनबद्ध है, मरने के लिए तैयार है वो अपना दिया वचन पूरा करने के लिए, है कि नहीं। ऐसे कितनी कहानियां हैं शास्त्र में, कितनी सारी कहानियां हैं जो हमको प्रेरणा देती है कि हमारी जबान जो है ना वो ऐसा ही कुछ ना कुछ बोलने के लिए नहीं है। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाउले, ऐसा तुकाराम महाराज ने बताया। जो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग, अभी आपने अभी देखो कल्याण डोंबिवली में महानगर पालिका का इलेक्शन हो गया, अभी कोल्हापुर में हो गया, अभी और किधर भी होगा, इधर होगा उधर होगा, आप जानते हैं ना, बहुत लोग आके बड़ा बड़ा भाषण ठोकते जाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ पर नंदनवन खड़ा कर देंगे, यहाँ पर स्वर्ग का आनंद देंगे आपको, बेस्ट जो है वो सब करेंगे, हमको सेवा का मौका दो, हमें भी एक बार आने दो आपके इसमें, केवल पैसा खाने के लिए वादा करते हैं। सब जानते हैं ये सब लोग ठोक रहे हैं, ऐसा ही देख रहे किसका बल किधर है, कितना पावर किधर है, फिर वो एक दो चोर चार चोर के बीच में एक चोर को चुन लेते हैं, चलो भाई जरा बढ़िया चोर है तू, हमारे से जरा अपना भी काम कर लेगा, खुद तो चोरी करेगा लेकिन थोड़ा बहुत काम भी हमारे लिए करेगा, तो ठीक है तुम पसंद है हमारे लिए, एक वोट देते उसको। लोग सब जानते हैं कि सारे वादे तोड़ने के लिए होते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, गाते ना पिक्चर में, इसका मतलब क्या है, सारी कसमें वादे सब तोड़ने के लिए होते हैं। कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, कोई कोई वादा करने सच्चा नहीं करता, सब ऐसे ही लुभाने के लिए, स्वार्थ के लिए, भूल भुलैया कराने के लिए करते हैं, है ना। शादी के पहले कितने वादे करते हैं, शादी के बाद सारे वादे भूल जाते हैं, फिर झगड़े होते हैं खाली, तुमने ऐसा बोला था, तुमने वैसा बोला था, शादी के पहले ये प्रॉमिस किया था मुझे चेन देंगे, मुझे मोटरसाइकिल देंगे, ये कपड़ भी नहीं दिया, चेन मोटरसाइकिल तो रह जाओ। कितना बड़े बड़े वादे कहते, डॉक्टर का डॉक्टर पति चाहिए आपको, डॉक्टर जमाई चाहिए, तो कितना मुझे प्रलोभन दिया था कि ये देंगे वो देंगे, एक बार शादी हो गया सब भूल गए, कैसे माता पिता है तुम्हारे, फिर वो बोलेगे तुमने ऐसा वादा किया था, तुमने वो वादा किया था, कोई वादा नहीं पूरा करता है। यहाँ पर देखो वादा किसी ने किया है लेकिन बेटा भी उस वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, और दोनों ने बीच में वाद चल रहा है तो मालिक बोल रहा है नहीं नहीं तुम तो हमारे प्रजा हो, मैं मरूंगा तुम्हारे लिए। आपको लगेगा कि ये कहानी तो है क्या, सच में है कैसा, लेकिन ऐसा एक जमाना था, आज वो दुर्भाग्य से नहीं है, लेकिन समझो आपको ऐसे जमाने में जाने को मौका मिलेगा तो कितने आप खुश रहेंगे। सब लोग सत्यवादी, वचन पूरा करने वाले, जैसे हम लोग जॉब लेते हैं भक्ति विधान में, वादा करते कि मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये मैं काम करूंगा, कुछ दिन करते हैं नए नए, बाद में फिर वो इधर उधर आलस्य करेंगे, बैठेंगे इधर उधर मस्त करेंगे, कोई साहब आए तुरंत थोड़ा काम करेंगे, फिर वापस बैठ जाएंगे, फिर ड्यूटी पर सो जाएंगे, फिर व्हाट्सएप में वो क्या पिक्चर आया उसको देखेंगे, है ना, ऑन ड्यूटी, उसका पगार नहीं मिलता है व्हाट्सएप पे ड्यूटी में देखने के लिए। हाँ ड्यूटी में कथा सुनने आएगा तो उसका पगार मिलेगा, लेकिन ड्यूटी में व्हाट्सएप पे देखेगा तो उसके लिए पगार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग चीटिंग करते हैं ना। वो एक जमाना था कि जिसमें लोग दिए हुए वादे के लिए मरने को तैयार हैं, और आज का एक जमाना ऐसा है कि लोग सब वादे तोड़ने के लिए, कोई उनको शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई दुख नहीं है इस बात का कि मैंने वादा तोड़ दिया, वो केयर्स। तो फिर वो शेर जो है ना वो अपना रूप दिखाता है, वो धर्मराज मतलब यमराज का अवतार है, भगवान कृष्ण भी वहां प्रकट होते हैं, और शेर को मतलब वो शेर जो ये परीक्षा करने के लिए आए थे, गाय का महात्म्य जो है, गाय की जो महिमा है उसको प्रकट करने के लिए वो आए थे, तो तीनों लोगों को गाय, मतलब वो शेर जो है वो धर्मराज का स्वरूप धारण करता है, भगवान भी उनको बना देते हैं। एक सत्यवादी होने का जो लीला है भगवान ने वहां पर दिखाया। तो बहुलाष्टमी इस दिन को मानी जाती है जिस दिन ये लीला हुई थी, और हम सब लोग को सीखने के लिए बहुत है इसके अंदर। बड़े बड़े वादे करने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन जो भी छोटा मोटा वादा हमने किया है उसको पालन करना चाहिए। वो हमारे राम जी के परिवार में, हाँ, रघुकुल बोलते, रघुकुल यानी कि रघु के वंश में भगवान का जन्म हुआ। वो सूर्यवंशी है, एक वंश सूर्य का है, एक वंश चंद्र का है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी। तो भगवान कृष्ण जो है वो चंद्रवंश में जन्म लिया उन्होंने, राधा रानी ने सूर्यवंश में जन्म लिया। लेकिन उसके पहले युग में प्रभु राम ने राधा रानी के वंश में पहले जन्म लिया था, सूर्यवंश में, रघुकुल में। उसका क्या गौरव है उस कुल का, रघुकुल की ऐसी रीत चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। मरेंगे लोग लेकिन अपना दिया हुआ वादा पूरा करेंगे, अगर मरना भी पड़ेगा तो भी वो मर के भी अपना वादा पूरा करेंगे। ऐसा रघुकुल का एक महात्म्य था। जब विश्वामित्र मुनि आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु राम, उन्होंने कहा कि महाराज आज्ञा कीजिए, क्या चाहिए आप, क्या सेवा करो आपकी, बोलेंगे जो भी बताऊंगा वो करोगे, हाँ महाराज बिल्कुल आप दे दीजिए। फिर बोले मुझे राम दे दो, मुझे कुछ दिन उसको वन में लेके जाना है राक्षस का वध करने के लिए। जैसे ही सुना अरे राम को लेके जाएंगे, 12 साल की उम्र के तो बेहोश होकर गिर गए उधर। फिर बहुत मेहनत से उनको जगाया और रो रहे हैं, बिल्कुल ये विचार भी सहन नहीं हो रहा है। बोले अरे अभी तुमने बोला था कि जो चाहे मांगो दे दूंगा, अभी मैं राम को मांगा तो तुम बेहोश हो गए, छोड़ दो, जाने दो, कष्ट मत करो, इतना तकलीफ मत लो, इतना कर परेशानी हो रही है, चक्कर आ रही है, उल्टी हो रही है और बेहोश हो रहे हैं, मत करो, छोड़ो, किसी और को ढूंढ लेंगे। बोलते नहीं, वो तो मेरी भावना है ना, मेरा प्रेम है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है मुझे, उसको मैं रोक सकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने बेहोश हो जाऊं, उल्टी करूं, लेकिन क्या करूं, मेरा प्रेम की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, शरीर में दुख हो रहा है मुझे, लेकिन मैंने वादा किया है आप ले सकते हो राम जी को। तो राम जी को लेकर फिर चले और इतने दुखी रहे। बोले मैं सेना लेके आऊंगा, मेरी इतना बालक को लेके जाते हो, मैं पूरी सेना लेके आपके साथ में आऊंगा, आपको किसको मारना है बताओ, मैं आऊंगा। बोलते नहीं, तुमने क्या कहा था, क्या चाहिए, तो मैंने कहा राम चाहिए, तो राम देने दे दो, अपनी सेना बना के बात मत करो। तो दशरथ जी भी बहुत भावनाओं में थे लेकिन फिर भी वादा पूरा किया। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है उनकी, दशरथ की। एक बार वो जटायु ने उनको युद्ध भूमि में शनि के साथ युद्ध करते हुए उनको एक बार बचाया था। जटायु वालों में ना गीदड़, उसने वादा किया था तुमने मेरी जान बचाई, आज मैं मर रहा था शनि के युद्ध में और तुमने जान बचाकर मुझे शनि से वरदान दिलवाया, बाद में शनि इतने प्रभावित हो गए, तो मैं अब मुझे बालक नहीं हुआ अब तक, लेकिन मुझे जब बालक होगा ना तो मेरा पहला बालक मैं आपको दूंगा भेंट के रूप में। पुराने जमाने में ऐसे होता था, भैया पर इतना प्रेम करते थे, भैया को बालक नहीं है तो ले लो मेरा बालक आपका आज से, ऐसे लोग पालन करते थे। कुंती का भी ऐसा ही था, कुंती का जन्म सूरसेन के पास में हुआ था, लेकिन सूरसेन का एक फ्रेंड था कुंती बोझ, उसको बालक नहीं थे, तो सूरसेन ने अपनी कन्या को कुंती उसको दे दिया, सिर्फ उसका नाम कुंती पड़ गया, उसका नाम प्रथा था पहले, लेकिन प्रेम की वजह से उसने अपनी पुत्री को कुंती बोझ को फ्रेंड को दे दिया और उसने उसका लालन पालन किया, उसका नाम कुंती पड़ा। ऐसे कई कहानी, तो जटायु का ऐसा ही हो गया, तो उन्होंने बोला कि जब मेरा पहला बालक होगा मैं आपको दूंगा। बहुत समय गया बीच में, यथावकाश प्रभु रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो भगवान जैसे जन्म हुआ सब लोग बधाई गा रहे हैं, मना रहे हैं, जन्म हो गया। अचानक वो राम जी को, बालक को लेके चले जाते हैं। सब लोग बोल रहे हैं अरे क्या हो गया, इतना जन्म के बाद में जन्म बच्चा हो गया, किसी को बताए बिना एक बालक को उठा के ले जा रहे हैं, क्या राजा को कौन प्रश्न करेगा, राजा क्या कर रहे हैं आप, ऐसा कौन प्रश्न करेगा, सब लोग दुखी हो रहे हैं। सीधे बालक को उठा के एकदम, अभी अभी ऐसे अपने के साथ NICU में अभी जन्म हो गया तो उसके वॉश करके सीधा NICU में, वैसे छोटा सा बालक जिसको भी कुछ घंटे भी नहीं हुए जन्म हो के, सीधे अयोध्या की सीमा पर देखते हैं कि एक बड़ा गिदड़ बैठा हुआ है, आकाश को सर लग रहा है उसका, इतना भयंकर सफेद रंग का पहाड़ जैसा गिधर बैठा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं ना, दिखाई पड़ रहा है उनको, उसके पास जा रहे हैं। अरे गिधर के पास क्यों जा रहे हैं? ये अपवित्र होता है गिधर का दर्शन करना ऐसे पवित्र समय पर। जाके उसको बोलते हैं मैंने वादा किया था, तो जरायु भी आ जाता है। तो जरायु बोलता है कि मैं गिधड़ हूं, मुझे मनुष्य के बच्चों को संभालने का ट्रेनिंग नहीं मिला है, इसलिए इसको वापस लेके जाओ, जब उसको पाल पोस के बड़ा करोगे फिर मुझे वापस देने को आना। फिर वो वापस लेके जाते हैं और बाद में सब कहानी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, वैसे वैसे वादा किया था, तो वादा पूरा करने के लिए मैं गया था, अभी उन्होंने कहा है कि मुझे पालने को नहीं आता है, आप ही रखो, फिर वापस लेके आए। अपने दिल के टुकड़े को देने को भी तैयार है। देखो आप, ये सत्यवादी का परिणाम है। सत्यवादी होने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, झूठ बोलने से भगवान से दूर चले जाते हैं हम लोग। अच्छे काम के झूठ बोला तो ठीक है, कोई लड़की पर कोई अत्याचार कर रहा है, वो तुम्हारे घर में आकर छुप गई, हो पूछे किधर लड़की है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास नहीं है, वो चली गई यहाँ से, इधर से भाग के गई उधर। वो झूठ को झूठ नहीं बोलते हैं, वो सत्य है। वो जान बचाने के लिए आप झूठ बोलने का मतलब सत्य सत्य का ही आधार ले रहे हैं आप। लेकिन लोग आज झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ऐसे फटफट फट झूठ बोलते हैं, हैबिट हो गए सब लोग। लेकिन सत्य इतना पावरफुल चीज है कि सत्य का पालन करने से, सत्य वचनी होने से आप भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो इसलिए जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है तो कुछ रीति रिवाज को पालन करना भी जरूरी है, कुछ संस्कार भी होने जरूरी है। उसमें से एक संस्कार यह है कि दिए हुए वचन को पालन करना और कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना। जान जाएगा चलेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। और जो सत्यवादी होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो हमेशा सत्य बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक गुरु के पास में गया, वो ब्राह्मण के बालकों का गुरु था, ब्राह्मण गुरु था वो, ब्राह्मण के बालक को वेद विद्या सिखाने का गुरु था वो। तो एक लड़का उसके पास गया महाराज के पास, महाराज जी गुरु जी मुझे शिष्य बनाओ, मुझे गुरुकुल में प्रवेश दो। तो कहता है, गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम्हारे कुल का नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। तो कहता है अरे मुझे पता नहीं, मेरी माँ को पूछ के आता हूँ। वो छोटा बालक था, माँ के पास गया, माता जी गुरु जी पूछ रहे हैं कि हमारा माता तुम्हारा और पिताजी का नाम क्या है, वो कौन से कुल के हो तुम, मुझे वहाँ पर बोलना है उनको एंट्री करने के लिए। तो माता कहती है अरे बेटा मैं तो वेश्या थी, मुझे पता नहीं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, मैं नहीं बोल सकती। अभी बड़ी समस्या आ गई ना, अभी माता ही खुद बोल रही है मुझे पिताजी का पता नहीं है, तो क्या वो कैसे करेगा। लेकिन बालक इतना सत्यवादी है, वापस जाता है गुरुजी के पास, बोलता है मेरी मैया कह रही है कि मैं वेश्या थी और उनको मेरे पिताजी का पता नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, तुमको प्रवेश देता हूं मैं। इतना कड़वा सत्य है ये, सोच सकते हैं आप। अभी मैं समझो अचानक मुझे मालूम पड़ा कि मेरी ये अवस्था है जो बालक की अवस्था थी, तो मुझे कितना दुख होगा। अरे बाप रे, मैं तो सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा। लेकिन फिर भी इतने कड़वे सत्य को उसने जाके सीधे गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये है, क्या करना चाहते हैं। तो गुरुजी बोले आप ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति जो है किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलने को डरता नहीं है। वो चाहे उसको लाछन मिले, चाहे कोई गाली मिले, चाहे उसका निंदा हो, चाहे उसका नुकसान हो, बदनामी हो, चाहे जान चली जाए, ब्राह्मण जो है वो सत्य बोलता है हमेशा। तो ये गुण उसके बालक के अंदर दिखा, तो बोला तुम्हारे अंदर ब्राह्मण का गुण है इसलिए तुम ब्राह्मण ही हो, आ जाओ। और कर्ण ने परशुराम जी को झूठ बोला, मैं भार्गव कुल का ब्राह्मण हूं, मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना है, झूठ बोल के एंट्री मारा, ब्रह्मास्त्र सीख गया वो। लेकिन उसका भांडा जो है वो फूट गया एक दिन, कि वो ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय है। तो उसको शाप मिला कि तुमने झूठ बोलकर मेरे गुरुकुल में ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए प्रवेश मिलाया और ब्रह्मास्त्र सीख भी लिया, लेकिन जब तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध करते होंगे और इस अस्त्र का इस्तेमाल करना चाहोगे, तुम इस अस्त्र को भूल जाओगे, तो क्या फायदा हुआ। जिस चीज के लिए झूठ बोल के प्रवेश मिला वो प्राप्त भी किया, लेकिन हाथ से निकल गया। हम सोचते हैं कि हम झूठ बोल के बहुत सारा चीज प्राप्त करेंगे, लेकिन झूठ बोलने के जब बाद जो प्राप्त होता है वो तुम्हारे पास कभी टिकता नहीं है। जो सोच के तुम झूठ बोल के वो चीज प्राप्त कर दिया है तुमने, तुम क्या तुम्हारे भोग के लिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। खाली हम सोचते हैं कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, देखो ऐसा उल्लू बनाया उसको, देखो कैसा मेरे को जो मिलाना था वो मिल प्राप्त कर ही लिया मैंने, लेकिन आपको लगेगा आ गया मेरे हाथ में, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, वो भोगने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नहीं है वो, आपके हिस्से में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है, वो चीटिंग करके आपने लिया हुआ है। असत्य के आधार पर प्राप्त किया हुआ जो भी वस्तु है वो हमारे लिए विनाशकारी वस्तु है, अगर भोग ले भी सकते हैं उसका तो भी हमका विनाश करेगी वो, इसलिए जो भी हमारे नसीब में है उसी को भोगने का प्रयास करो। जो भी आपको आज मिला हुआ है जायज तरीके से, चीटिंग से नहीं, मेहनत से, पसीने की कमाई से, सत्य बोलने से, ईमानदारी से जो आपने कमाया है वही आपके हक में है, और जो आपके नसीब में नहीं है आप कितना भी उड़ी मारो आपको नहीं मिलेगा वो, कितना भी चीटिंग करो और पैसा इकट्ठा करो, देखो बाद में क्या होता है, आपको नशा लग जाएगी, आपको HIV हो जाएगा, आपके बच्चे नशा करेंगे, आपके बच्चा भाग जाएगा, लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। जब गलत तरीके से धन कमाकर हम लोग उसका भोग लेना चाहते हैं तो जीवन का विध्वंस हो जाता है, और पसीने की कमाई खाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे काम में, जो पगार मिल रहा है उसके लिए काम करेंगे, वो धन आपके लिए बरकत का धन है, वो आपकी आत्मा की वृद्धि करेगा, आपके सद्गुणों की वृद्धि करेगा, आपके जमीर को आदरणीय बनाएगा। इसलिए कभी भी झूठ का लाभ कभी लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कभी भी चीटिंग करके कुछ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो भगवान की कृपा से मिल रहा है उसमें संतुष्टि माननी चाहिए कि मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिलेगा। छीन छान के कुछ चीज मिलेगी तो आपको भोगने ले सकते उसका, बैंक में जमा हो जाएगा लेकिन आपके उसको भोगने को मौका नहीं मिलेगा, मर जाएंगे आप उसके पहले ही, कोई और भोगेगा उसको, हमने सोचा था कि हम उसको भोगेंगे आनंद करेंगे, लेकिन जो छीन कर लिया हुआ चीज है उसका भोग नहीं ले सकते हम। रावण ने भी छीन कर लिया सीता को लेकिन भोग नहीं ले पाया उसको, ये उसकी वस्तु नहीं थी, वो उसको भोग तो मिला ही नहीं, वो खुद ही मरा नहीं, सारा परिवार को साथ लेके मर गया वो, क्योंकि असत्य का काम किया उसने, गलत काम किया। इसलिए हम लोगों को सबको, हम तो वो छोटे व्यक्ति हैं, हमको इतना बड़ा बड़ा चोरी नहीं कर सकते हैं जो रावण ने करना चाहा था, हाँ छोटे मोटे चीज़ हम लोग, हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है कि जो भी हमारा काम है, जो भी तनख्वाह मिल रही है उसको प्रामाणिकता से काम करना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं करना चाहिए, फिर जल्दी आना जल्दी जाना, लेट आना, फिर काम नहीं करना, फिर सब दिखावा करना, नहीं करना चाहिए, जो हमारा काम है ईमानदारी से करना चाहिए, उसकी तनख्वाह मिल रही है लेना चाहिए, वो आपको बरकत करेगा, आपके परिवार का कल्याण करेगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे, जीवन में तरक्की होगा, ये हमको सीखना है। एक गाय जिसकी मृत्यु होने वाली है वो भी डर नहीं रही है, बोलते आऊंगी दूध पिला के आती हूँ, गई वहां पर मरने के लिए लेकिन मरी नहीं, वो भगवान ने बचाया उसको। तो हम भी सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो भगवान आपको बचाएंगे, संकट आपको जरूर आएंगे, लेकिन सत्य के रास्ते पर चलने वाले को कोई डरने की जरूरत नहीं है, सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो है उसके साथ भगवान होते हैं, क्योंकि स्वयं परम सत्य भगवान है। अगर उस सत्य के रास्ते पर आप चल रहे हो तो भगवान आपका साथ हमेशा देते हैं, आप चाहे गरीब हो, चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, छोटे से आदमी हो, लेकिन भगवान आपके साथ में होने से आप सबसे अमीर बन जाते हो, सबसे बड़ी अमीरी तो वही है भगवान का साथ मिलना। इसलिए अर्जुन को भगवान ने बोला देखो मेरी एक बड़ी सेना है वो आप ले लो, वो सब शस्त्र वस्त्र लेके आएगी युद्ध करने के लिए, और एक मैं हूँ जो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा और युद्ध भी नहीं करूंगा। तो फिर भी अर्जुन ने क्या बोला, आप शस्त्र भी नहीं उठाएंगे चलेगा, चक्र भी नहीं उठाएंगे, धनुष नहीं उठाएंगे, और योद्धा बनकर युद्ध भी नहीं करेंगे, सारथी बनकर रहेंगे तो भी आप मुझे चाहिए। तो दुर्योधन मन में हंस रहा है, ऐसा उल्लू का पट्टा है, देखो भगवान स्वयं छोटा बच्चा है इसलिए, छोटा भाई है इसलिए, पहला चांस उसको है मांगने का, और चॉइस उसको दिया गया है, मैं निहत्ता या मेरी सेना। तो बाद में दुर्योधन क्या बोलता है, तू छोटा भाई है ना, तेरे को जो चाहिए तो ले ले, क्योंकि उसने ले लिया ऑलरेडी कृष्ण को। मन में हंसता है कितना मूर्ख आदमी है, और सेना लेके चला जाता है। तो भगवान की नारायणी सेना जो है उसमें से एक बात भी मरता नहीं है, उसका वरदान है उसको, मेरी नारायणी सेना जो है वो तुम्हारे पक्ष में युद्ध करेगी, उसमें से एक भी योद्धा नहीं मरेगा, लोगों को मारते रहेंगे वो, खुद नहीं मरेंगे, उसका वरदान है उनके लिए। तो वो नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया उन्होंने, वो नहीं मरे, लेकिन सब कौरव मर गए, और विजय कौन हुआ, पांडव हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान निहत्य भी होंगे, चक्र के बिना भी होंगे, सारथी बने भी होंगे, अरे भगवान है वो, साधारण जीव नहीं है,
उनका साथ में होना ही यश का कारण है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां ये कृष्ण और अर्जुन साथ में खड़े हैं वहां पर विजय है, नीति है, सत्य है, सब कुछ है, वहां पर भरभराट है, प्रसिद्धि है, क्या कहते हैं उसको, समृद्धि है, सब कुछ उस जगह पर है जहां पर ये दोनों खड़े हैं, जहां पर भगवान और भक्त के साथ खड़े हैं आसरा लेकर भगवान का, सब कुछ जीवन का कल्याण उस जगह पर है। और जहां धन संपत्ति है, दौलत है, ऐश्वर्य है, वहां मृत्यु निश्चित है और विनाश भी निश्चित है। सत्य का सहारा लो और भगवान को अपने पक्ष में करो, चाहे गरीब रहे गए लेकिन भगवान को आपके पक्ष में लेने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुला देवी का